ये सब गौण है और स्वरूप सिद्धा ये मुख्य है। प्रीति हो गया है और अब नहीं छूट सकता, असंभव है। बोलते प्राण जाए रघु की नदी सदा चली जाए, प्राण जाए गुरु बच्चन न जाए। प्रतिज्ञा कर लेते पहले, जो हो जाए हो जाएगा, मैं छोड़ नहीं सकता। एक बार गला दे दिया, अनार दे दिया, तो वही लौटाना नहीं है। दिखा है ना लक्षण स्वरूप सिद्धा की, मुरारी गुप्त और उधर दिखाया किसको, अनुपम बल्लभ जो रूप सनातन रूप सनातन भाई छोटे भाई, वो बोले राम के चरण में सर दे दिया, अब मैं कैसे लौटा के लाऊं। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी निशिनंद ब्रह्मचारी भोग लगाया जगन्नाथ जी के और कृष्ण के और इसके निशिनदेव के, और भोग लगाया महाप्रभु की स्मरण किया, महाप्रभु जी आ गए जगन्नाथ का भोग निशिनदेव का भोग और कृष्ण का भोग तीनों खा गए। मनीमन भूख बुलाया स्मरण किया और अंदर दरवाजा खुला, भीतर दिया एक भी थाली में कुछ प्रसाद नहीं है। रोने लग गए, हाय हाय ये क्या हो गया, आपने हमारा निशिनदेव का भोग भी खा लिया, जगन्नाथ और कृष्ण का खा लो कोई बात नहीं, आप जगन्नाथ कृष्ण है किन्तु हमारा निशिनदेव उपवास थी। हाँ तो उपवास थे तो निशिनदेव है, भक्त कैसे जिएगा, प्रभु नहीं खाए तो भक्त कैसे जिएगा। फिर चूल्हा चौका करके बर्तन मार के फिर रस्सी बनाया, फिर बोला गया सुनने वाला नहीं, ऐसी निष्ठा अपना प्रीति जिसमें हो जाते मानने वाले हैं, बदलेगा छूटेगा कभी नहीं छूटेगा। इससे यदि गुरु वैष्णव से किसी संबंध हो जाए, चाहे माया खींचे चाहे और कोई खींचता नहीं करे, छूटेगा नहीं है। यदि उनको छोड़ दिया, उनसे प्रीति हट गया और किससे लग गया, साधकों का यही ज्यादा गलती होता है, किसी गुरु वैष्णव की कृपा से भक्ति राज्य में आए, अब क्या करता है उनके अनुजाई हो गया, किसी को बड़े मेहनत करके एकादशी करने लग गए या भजन में लगाने लग गए, अब उनके साथ प्रीति हो गया। भगवान बोलते अच्छा, गुरु वैष्णव बोलते अच्छा, अब मैं तेरे लिए कम हो गया है, वो तेरा प्यारा बन गया। अरे बुद्धि नहीं है, चेष्टा नहीं, निरपेक्ष में हर कथा कीर्तन करो, कोई सुन रहा है कोई पालन कर रहा है तो उसका कल्याण है, भगवान उनको कृपा करेंगे, बस हमारे लिए पूज्य है, हमारे लिए वो आदरणीय है, किंतु हम उनके पूज्य नहीं है। ये तो प्रभु ने कृपा किया, मैं करने वाला कौन होता हूँ। तुमने प्रभु की बातों को सुनकर के स्वीकार की, तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा है भाई, निरपेक्ष और उनका प्रीति गुरु वैष्णव में लगा हुआ है, तो क्या होगा उनके प्रभाव से चित्तवृत्ति मुख्य गति में पहुंचेगा, उन्नति और हो जाएगा। अगर बीच रास्ता में उन लोगों को छोड़ दिया, नीचे की तरफ प्रीति हो गया, जिसमें उदाहरण देता हूँ कि माता पिता अपने बच्चे को बड़ा प्यार करता है किंतु अपने माँ बाप को नहीं करता, तो अब क्या होता है उनके जो बच्चे होते हैं तो बोलते बेटा माँ बाप की सेवा करना चाहिए, उनसे प्रीति रखना चाहिए, तो बोलते पिताजी आपने अपने पिता के प्रति कितना प्यार किया, अपने माँ की कितनी सेवा की, आपसे खून तो मेरे अंदर आया, आपने अपने बच्चे को प्यार किया, मैं अपने बच्चे को करूंगा, आपने अपने गुरुओं को बया आगू करा नहीं तो मैं क्यों करूं, मैं भी नहीं करता। इस प्रकार से अपने अनुजाई व्यक्तियों को बहुत स्नेह प्यार करते हैं किंतु गुरु वर्गों के प्रति जो प्रीति पहले थी वो प्रीति नष्ट हो गया अर्थात कम हो गया, तो स्वरूप सिद्ध भक्ति कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। छोटे को जिसको प्यार किया उसके गुण तो हमारे अंदर आ रहा है, अब दादा की प्रतिज्ञा की उसके साथ हो रहा है, हैं? पहले कभी मंदिर आते आठ आना एक रुपया दे भी देते, कुछ चीज ला करके दे देते, और मंदिर से कुछ छिपा करके रख लेते हैं हमारे अनुजाइयों को खिलाना है, और वो भी यदि हरि गुरु वैष्णव के प्रीति के लिए होता तो भक्ति के तभी माना जाता, अब तो जिसको हम जिसके लिए करते हैं उसके गुण संचारित होकर के आकर के हमारा सभी चले जा रहा है, चित्तवृत्ति उन्नत तो नहीं होता और गुरु वैष्णव को प्रिय पात्र बन नहीं पाते, दुर्दशा दुर्दैव आकर के हम लोग को सर्वनाश कर देते हैं। इसे भक्ति राज्य सूक्ष्म विचार और ये विचार ही है शुद्ध ज्ञान, ये ज्ञान के द्वारा सुवैराग्य, हमें ये चिंता करना है मुझे चाहिए जीवन का कुछ उन्नति करना। आनुषंगिक रूप में उनके आदेश पालन कर रहे हैं, सबको दे रहे, ले रहे, खिला रहे, बांट रहे, जो कुछ कर रहे हैं उनका आदेश पालन कर रहे हैं, जिससे कि वो हमारे प्रति प्रसन्न होंगे। निरपेक्ष रूप में कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं। जो मंदिर की सेवा करते हैं, मंदिर में आए हैं, सभी भगवान के। महाराज जी मुझे बोले, लड़ाई हो, दुश्मनी हो, एक का कभी मत करना। प्रसाद के समान है, सबका समान अधिकार है, भगवान के प्रसाद है। किंतु तुम्हारा व्यक्तिगत तो कोई भगवती संपत्ति नहीं है, है? मंदिर की भगवान के सेवक है, उनके प्रति आदर श्रद्धा दिखाना चाहिए, किंतु घृणा किसी को नहीं करने का। एक कर्मी महाराजी भी आ गया, उनको भी कैसे भी व्यक्ति आ गया, दुश्मन आ गया, तभी भगवत प्रसाद उनको भी खिलाना है, किंतु भक्तों के साथ, सेवकों के साथ प्रीति युक्त होकर के। किंतु देखना पड़ेगा ये प्रीति हमारा नीचे न चला जाए, यदि गया फिर संसार दशा होगा, गड़बड़ हो जाएगा, भजन नहीं होगा, भजन में माटी, यदि ना जाना परिपाटी, सेवा परिपाटी, सेवा का परिपाटी सीखना होगा, नहीं तो भजन मिट्टी में जाएगा। इसे बताते भाई, आरोप सिद्ध संग सिद्ध का गौण स्थिति होता है, ये डामाडोल चित्त के होते हैं, कभी करा कभी नहीं करा। सत सिद्ध आत्मवृत्ति, आत्मवृद्धि भक्ति, शुद्ध भक्ति सार, बद्ध जीव मनोवृत्ति उदय तहार। सत सिद्ध आत्मवृत्ति, जो सत सिद्ध आत्मवृत्ति है वो कैसे आए होगा, ये शुद्ध भक्ति का सार है। सब समान बहुत सब सावधानी के साथ बरतना है। बद्ध जीव के मन में ये धीरे धीरे करके उदित होता है। क्या कृष्ण मुख जल दे जहार तहार विस्तृति, ये जगते भक्ति देवी रे रूप स्थिति। जो कृष्ण मुख है उनके जल शरीर में भी उनका विस्तार लाभ हो जाता है, उनका प्रसाद प्रचार हो जाता है, हो जाने से भक्ति देवी वहां पर ही बात करते हैं, फिर वो भक्ति देवी का स्थान हो जाता है। इस जगत में बहुत कम मिलेंगे जिनके समस्त भक्तिमय जीवन है, ईर्षा नहीं, देश नहीं, विराग नहीं, अनुराग नहीं, है सबके प्रति प्रीति करते हैं, यथाज्ञ राग यथाज्ञ भोग तथा नहीं रोग, विचार समूह सकली माधव भाई, सब प्रभु के हैं, किसी को घृणा नहीं। किंतु भक्तिमान श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी भाई, भक्ति भी ऐसे हृदय में जाके विराजमान हो जाते हैं। अब बता रहे हैं त्रिविधा भक्ति के, त्रिविधा क्रिया, तीन प्रकार भक्ति के तीन प्रकार फल होते हैं, कार्य भी होते हैं। कैसे? से भक्ति स्वरूप सिद्धा साक्षात क्रिया जता संग सिद्धा सचर साहज्य सर्वथा। बता रहे हैं स्वरूप सिद्धा भक्ति जो करेंगे उनका साक्षात क्रिया कैसा है, संग सिद्धा उनके साथ सब समय मदद करने वाले होंगे, अर्थात जो लोग उनके साथ में रहेंगे वो भी अब धीरे धीरे उत्तम होने जा रहे हैं, स्वरूप सिद्धि में जा रहे हैं, संग सिद्धा तक उनके साथ आकर के उनके से प्रीति करने चेष्टा करेंगे। अब उनको भगवान में प्रेम है तभी तो फूल ला करके दे रहे हैं, कि जो अभी प्रीति किसी कैसे जानते नहीं, उनसे भगवान में प्रेम है तभी तो गिलास पानी ला करके दे रहे हैं, सोचा ये ठंडा पानी नहीं है, ये भक्त थे। देखते गर्मी के दिन आ गया तो मंदिर में भगवान को गर्मी लगता है, नियम है गर्मी के दिनों में, पहले जमाना में बिजली तो था नहीं, हाथ का पंखा होता था, और मंदिर के प्रांगण में बड़े बड़े, पहले तो मिट्टी के कच्चे घर, तो बड़े बड़े भगुना में टोकना में या मिट्टी बांध करके पानी भर देते थे, या पक्के में पानी भर देते थे, चूने का घर होता, पानी भर दिया उसमें ठाकुर जी को बैठा दिया, सारे राम जी को ऊपर से सस्त्र धारा, सस्त्र ऐसे धारा लगा दिया, घड़ा भर दिया, पानी टपक रहा है सारे राम के ऊपर, गोपाल जी के ऊपर, और ऊपर से हाथ का पंखा है, बैठे बैठे पंखा खींच रहे हैं इस प्रकार से। और क्या करते थे, और ठाकुर जी को तो पानी का पियास लगता है, ठंडा पानी कहाँ से आएगा, स्नान तो करा रहा हूँ, शीतल तो शरीर है, पीने तो चाहिए, चले बहुत दूर में नारियल ले आए कच्चा डाब बड़ा बड़ा देख के, और घड़े के अंदर पानी के अंदर में भर के रख दिया, ठंडा हो रहा है उसको काट रहे हैं, काट करके प्रभु को नारियल से भोग लगाया, अब भूख लगाया तो आते देखते तो सुना नारियल है। जब एक साल बाद आते महापुरुष से मिलने जगन्नाथपुरी में, तो बोलता है राघव तुमने जो इस बार जेठ के महीने में 6 माइल दूर से, 10 किलोमीटर दूर से पैदल जा करके अच्छे अच्छे नारियल ले आए हो, जिसके पानी सुंदर सुमिष्ट और ठंडा करके तब मुझे दिया, मैं तृप्त हो गया, मैं तुमको खिला दूं। वो क्या करते थे, तो जाड़े के दिन में प्रभु को सूखे कुछ अच्छा लगता होगा चना या ऐसी मिठाइयाँ, वो पकौड़ी अचार मुरब्बे साल भर के लिए बना करके घोड़ो करके 3-4 नौकरों को देके 1000 किलोमीटर तय करके जगन्नाथपुरी में ले जाते। इसका नाम पड़ गया राघव झाली। सूखा चूरा और घी से मिला हुआ लड्डू, कोई सूखा लड्डू, कोई दूध खीर बना करके पाउडर बना करके, और उसके साथ में विभिन्न पर मिलवा दे के चूर्ण बना करके दे दिया। थोड़ा सा महापुरुष जी लेकर के पानी पियेंगे तो महापुरुष जी को दिन भर में कुछ नहीं खाया कभी कष्ट नहीं हुआ, समस्त मिलवाओं को पीछा चूरा किया। बताओ प्रीति है जब तो आराजाम साक्षात भगवत परिकर गुरुपाद ब्रह्म मिलने पर भी हाँ कोई चीज अच्छी चीज मिलता है तो गुरु के सेवा के लिए चिंतन नहीं है और उनके मनोरंजन के लिए हमारा भक्ति है। तो भक्ति कहाँ है, क्यों नहीं कभी भक्ति भी आएगी, हमारा प्रीति किस में लगा हुआ है, नहीं होगा। इसलिए भाई साक्षात भगवत परिकर भगवत पार्षद गुरुपाद ब्रह्म वैष्णव जौन इन लोगों के साथ चेष्टा करना है। अब तो ऐसा है एक वैष्णव है तो वो खाए कि नहीं खाए, उनको थाली दिया कि नहीं दिया कोई मतलब भी नहीं, हमारा गड्ढा भर जाए तो ही सब हो गया। वो उनको पानी चाहिए कि नहीं कोई मतलब नहीं है, कुछ किसी वैष्णव के लिए कुछ सेवा के लिए जरूरत है, आया आया खाया नहीं आया क्यों नहीं आया, अरे क्यों नहीं आया थोड़ा देखो बीमार है कष्ट है तकलीफ है या कुछ कारण है, नहीं ऐसा प्रीति का नियम नहीं है। ये कोई होटल या मनोरंजन के लिए स्थान नहीं है, यहाँ पर हम लोग एक वैष्णव से यदि प्रीति नहीं जुड़ा ये हमारा आत्मीय है, ये हमारा आत्मा के जन है, बांधव है, नित्य काल के साथी हैं, इसलिए हम लोग इन लोगों से प्रीति जोड़ने से निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। इसे संग सिद्धा सहचर बनेगा स्वरूप सिद्धा का। आरोप सिद्धा हो जाता प्राकृत वस्तु क्रिया अप्राकृत भावे साधे प्राकृत होना किया, आरोप सिद्धा भक्ति का प्राकृत वस्तु की तरह कार्य करते हैं, अप्राकृत सोच लेते हैं ये अप्राकृत सोचते हैं, यहाँ कहीं गए तो सोचे उत्तम भागवत की तरह ये नदी ये जरूर जमुना है, बस वहाँ जगह से जमुना अप्राकृत मान लिया, वहां स्नान करने को तलागन लग गए, कहीं गए पेड़ देखा ऊंचा जरूर ये पेड़ इसके नीचे महाप्रभु बैठे होंगे, किंतु उत्तम भागवत का ऐसा नहीं, उत्तम भागवत के लिए ये पेड़ ये जो कुछ है सब कुछ एज इट इज है, किंतु साधारण भक्त के लिए साधारण प्राकृतिक भक्त के लिए प्राकृतिक चीज को अप्राकृतिक बुद्धि करते हैं, किंतु कितनी देर के लिए जब तक कि अपना मूड है फिर इसके बाद में वो भी फेंक देगा उठा देगा। तो उन्होंने अपराधित भाव प्राकृत ना किया तो ये सभी अपराधित है कौरिष्ठ अधिकार उत्तम अधिकार की कड़ी कड़ी एक सा लक्षण दिखता है। स्वरूप उपाधि से बुझे रघुनाथ प्रीति स्वरूप तत्व जगाइए साथ, स्वरूप कामदारी की उपाधि से रघुनाथ जी इस तत्व को समझते हैं और प्रीति किसे कहते हैं और स्वरूप तत्व किसे कहते हैं इसके कुछ अवज्ञान हुआ है। कितना टाइम महाराज कृपा सिंधु भैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। इसे प्रेम विवर्त अष्टादश अध्याय श्री एकादशी। एकदिन गौरहरि श्रीगुंडिचा परिहरि जगन्नाथ बल्लभे वसिना, शुद्ध एकादशी दिने कृष्ण नाम संकीर्तने दिवस रजनी कटाइना। एक दिन चैतन्य महाप्रभु गुंडिचा मंदिर दर्शन करके आकर के कहाँ बैठे, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में, जहाँ पर जगन्नाथ जी के समस्त प्रिय, विश्व के ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश के सुंदर सुंदर फूल और फलों के बगीचे न हो, पेड़ न हो। सुंदर उद्यान है, विशाल उद्यान, जहाँ पर जगन्नाथ जी के लिए प्रतिदिन फूल और फल सब कुछ सेवा में जाता है। और चैतन्य महाप्रभु उन गुंडीचा मंदिर दर्शन करके आकर के जगन्नाथ वल्लभ में बैठे। क्यों बताते हैं? ये है सत्संग। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं उनके अंदर प्रभु की सेवा करने से प्रभु के गुण अपने आप ऑटोमेटिक आके हाजिर हो जाते हैं, उनके हृदय निर्मल शांत प्रशांत आनंदमय बना देते हैं, उनको दुख शोक मोह रोग भय इससे सदा दूर हो जाते हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है। तो अभी हम साधु कहाँ ढूंढेंगे? तब बताते हैं, देखना पड़ेगा जिसकी चित्तवृत्ति सब सेवा में प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। शरीर गॉड गिफ्ट, प्रभु की दी हुई वस्तु है, इसकी रखवाली करना है। किंतु हम तो कर रख नहीं सकते रखवाली, यदि हम रखवाली कर सकते तो भी मरते ही नहीं, कोई बीमार होते ही नहीं, अच्छा खाते अच्छा पहनते हैं, दुखी बनते क्यों? तो फिर क्या करना है? जिस ईश्वर ने जिस मालिक ने इस शरीर को दिया है, पहले यदि हम उनके लिए कुछ सेवा करते हैं तो कहीं अच्छा ये संपत्ति से दी, इस संपत्ति के द्वारा मेरी सेवा करते हैं तो वो क्या करेंगे? ऑटोमेटिक इसी प्यार करेंगे। ऐसे माता पिता गुरुजन अपने बच्चे की देखभाल करता है, और बच्चे यदि उद्यमी बेद बदमाश दुष्ट आवारा हो जाता है तो भी माता पिता भूल नहीं सकते, ऐसे गुरु या भगवान कभी भूल नहीं सकते। वो क्या करते हैं जब देखते हैं यदि संतान अच्छा है माता पिता की सेवा करता है तो जो कुछ माँ बाप के संपत्ति कहे न कहे सब कुछ इनके मिल जाता है, यही उत्तराधिकारी बनता है। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मेरे को एक काम करना है, क्या? ये जगन्नाथ वल्लभ जो उद्यान है ये सेवा करते हैं महाप्रभु की, जगन्नाथ जी की। कैसे? पेड़ में फल हुआ सेवा में जाता है, वहां से एक फल राजा नहीं ग्रहण करते, कोई गवर्नमेंट नहीं ले सकती या कोई पब्लिक के लिए नहीं मिलता, सब फल फूल सब प्रभु के सेवा में पहले जाएगा भोग में। जगन्नाथ जी का नियम ही ऐसा है, लाखों लाखों मन भोग लगते हैं और फिर प्रसाद आते हैं बाजार में, वो प्रसाद बिक्री होता है, उसी से पूरा करीब करीब एक किया जगन्नाथपुरी के लोग उसी में उस प्रसाद से बचे हुए हैं। तो इसलिए प्रभु के भोग के बिना कुछ होता नहीं। तो कुछ सोचा ये जो सेवक है इनके पास यदि मैं जाऊं इनकी कृपा मैं पाऊं तो मेरा कुछ आज एकादशी के दिन ठीक रहेगा, जो व्रत के दिन सत्संग करना चाहिए, हरि मंदिर में जाना चाहिए, हरि की गुणगान करना चाहिए, हरि की कथा सुनना चाहिए, ये सब नियम है। तो मैं आज भगवत सान्निध्य कैसे पाऊं? भक्त सान्निध्य, भक्त कृपा हो तो भगवान मिल जाएंगे अपने आप, ऑटोमेटिक मिलेगा, देर नहीं लगेगा। किसी को बस संत की कृपा हुई और वो खुश नहीं रहेगा या प्रभु कृपा नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो ये सत्संग। किंतु ये बात भी देखना पड़ेगा, 10 डकैत और लुटेरा चोर मिल करके बोले एक सत्संग खोल लिया, बोले झूठ मत बोलना, जो हिस्सा मिलेगा जो मिलेगा हिस्सा बांट के बराबर लेना है, ये सत्संग नहीं है। हैं सद वस्तु के लिए उनके गुणगान उनके यथार्थ विचार उनके समस्त उदारता निष्कपटता सरलता ये सब चीज जहाँ पर सदा वर्तमान है, जहाँ पर उसी की शिक्षा है उसी गुणगान कीर्तन या श्रवण हुआ तो होता है, तो सत्संग की कुछ परिभाषा है। इसमें बोलते हैं शुद्ध एकादशी दिन कृष्णाम संकीर्तन दिवस सजने काटाई जाए। शुद्ध एकादशी, एकादशी व्रत के दिन में ये ध्यान रखना है आज व्रत का दिन है, आज मैं किसी तरह से असत वार्ता असत संग या गलत जगह में जाना गलत कार्य करना गलत व्यक्तियों के साथ में संभाषण करना नहीं आज हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। मगर अपना चेष्टा युक्त होना चाहिए। इसे उस दिन बताए एकादशी अर्थात 11 इंद्रियां जो है हमारा, इस इंद्रियों के अधिपति जो प्रभु मालिक है उनके सेवा में आज रहना है। कैसे भी ये यदि चेष्टा करेंगे तो प्रभु कहेंगे अच्छा 15 दिन में एक दिन मेरे लिए दिया, रोज दिन दे नहीं सकते, बता रहे हैं कि महाप्रभु जी ने एकादशी के दिन जगन्नाथ बल्लभ उद्यान में दिन रात संकीर्तन के साथ बिताया। क्यों वहाँ संकीर्तन करने गए और अन्यत्र नहीं गए? वहाँ सभी लोग हैं सरल निष्कपट है, सब लोग भगवत कीर्तन कर सकते हैं, नहीं तो मुख से तो भगवान के नाम निकलेगा नहीं। दिन रात ये मन दूसरे दूसरे नामों की, दूसरे दूसरे वस्तुओं की, दूसरे दूसरे चिंता कर सकता है, क्योंकि भगवत नाम नहीं कर सकते। तो कहाँ गए? जगन्नाथ बल्लभ उद्यान में सरल निष्कपट सेवक उनके साथ वो कीर्तन करने लगे, तो सुनने लगे। दिन में कीर्तन किया, रात में भी कीर्तन किया, रात भर सोए नहीं। साथ में कौन है? संग स्वरूप दामोदर रामानंद बक्रेश्वर आर्यत क्षेत्र वासीगण प्रभु बोले एक मने कृष्ण नाम संकीर्तने निद्रार करिए वर्जन। अच्छा यहाँ पर बदलाते हैं, महाप्रभु जी ने कुछ ग्रहण नहीं किया, निर्जला व्रत किया, तो शरीर को भूख लगती है या मन को भूख लगती है प्रश्न आता है। एक व्यक्ति को उपवास रहने को बोलो उन्हें सत्यनेट जला, क्यों? छटपट छटपट करेगा। अब विचार आता है शरीर को भूख लग जाएगी मन को, एक व्यक्ति का मन बहुत खराब है, गाली गलौज मान अपमान हुए और पैसा वैसा नहीं है, दुखी है, सब लोग उसको खाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं वो नहीं खाना खाता है, दो दुखी है, सामने खाना रखा हुआ है मुंह में नहीं हो जाता है, तो फिर शरीर को भूख नहीं लगी क्यों नहीं खा रहा है? हैं? मन खराब होने से और खाना अंदर नहीं जाता है। खूब खुशी में है, कितना खुशी में मस्ती में है, कुछ कामों में लग गया ऐसा मस्ती में, कुछ पैसा मिल गया, कुछ लड़ाई लग गया, कुछ काम हो गया ऐसा मस्ती में हो गया, उसको खाने की फुर्सत नहीं, टाइम ही नहीं, भूल गया सब खाना पीना, तो शरीर को भूख लग दी है तो खाना लेना चाहिए था उसे, कमजोर हो रहा है लेकिन फिर भी ये आ रहा है वो आ रहा है मिल रहा है कोई कुछ हो रहा है लेना है दे रहा है, दिन बीत जाता है, रात हो गया रात बीत गया, सोया भी नहीं खाया भी नहीं, तो उसमें शरीर कैसे काम करता है? इसे बतलाया मन के अंदर उत्साह है, मन के अंदर बल है तो शरीर अपने आप उसकी मदद करने वाला होता है। साधुओं के ऐसा हो जाता है, साधु लोग दिन भर में एक बार थोड़ा खाया नहीं खाया दुखी नहीं, क्यों? उसका मन खाने में नहीं है, मन प्रभु के चरणों में है, इससे उनको इतना दुख नहीं होता। मैं जब नए नए आश्रम में आया तो निर्जला जब 24 घंटे का व्रत होता मैं पूछता था हमारे बूढ़े बाबाओं को संतों को, आप लोग कैसे व्रत करते हैं? हमारा तो मन बड़ा चंचल हो जाता है, दुपहर हो जाता है पागल हो जाता हूँ, पानी के लिए गला सूख जाता है। तो बोलते हैं अभी आपके मन खाने में पीने में लगा हुआ है, मन प्रभु के चरणों में अभी गया नहीं, स्पष्ट नहीं किया। अरे मन को उधर पहुंचा दो, खाने के लिए चिंता किस बात की करते हो? तो मैं समझ नहीं पाता था, अब देखता हूँ एक दिन क्या, तीन दिन क्या, चार दिन, दस दिन बीत जाता है तो कहाँ जाता है कोई पता नहीं, अब सो नहीं सकता, नहीं सोया नहीं तो कोई मतलब नहीं। अब क्यों? अब मन वो चीज में नहीं है, इसलिए निद्रा आहार कौन वर्जन कर सकता है? या तो बहुत खुशी में या तो दुख में। तो खुराक केवल शरीर नहीं खाता, मन के अंदर यदि भूख है तो शरीर ऑटोमेटिक उसको ग्रहण कर लेता है। तो किसके साथ रंजिश है, तो खाना ले आया, भूखे भी है तो देख कर खाएगा नहीं, इससे जहर न लाया, मन में संदेह है तो खाएगा नहीं। इसलिए बताया यदि मन शुद्ध है, मन यदि निर्मल है, उसको जो भगवत चरणों में लगा दिया जाए, जो भी चीज बल मिल गया, भगवत बल शक्ति मिल गया, तो उसको इस जगत के भूख प्यास और सता नहीं सकते, शरीर उनको उद्वेग नहीं दे सकते, मन स्थिर हो चुका है। मन जब तक स्थिर नहीं हुआ, मन में कोई चिंतन करता है
किसी विषय की, भोगों की विषय की, मन चंचल, शरीर अपने आप चंचल हो गया, उठ करके भाग गया। आया ना रामचंद्राचार्य के शिष्य की कथा, घर में बैठे हैं और वो रात को आ गई, अब बरसा हो रहा है, अंधेरा का समय है, और आकर धड़ाम से गिर गई और किरण लग गई। वो आकर उनको थोड़ा अंदर ले आए, कपड़ा पहनाया, सीखा, ठंड के दिन अलग घर दे दी, किंतु चुके मन चंचल हो गया। अब मन चंचल हो गया, फिर आ गया कहाँ, भाग गया, सर्वनाश हो गया। इसलिए बताते हैं मन यदि किसी वस्तु को ग्रहण कर लिया, शरीर तो मशीन है, उधर तो जाएगा ऑटोमेटिक, कैसे रुकेगा? बीमारी का जड़ क्या है? ये मन, इस मन को भगवत चरण अरविंद में लगाया जाए, किसी चीज में नियुक्त कर दी जाए तो मन कभी भी भागे नहीं, तो शरीर अपने आप मजबूत और स्वस्थ रहेगा। शरीर का विकार नहीं होगा। बतलाया शुद्ध एकादशी दिन कृष्णाम संकीर्तन दिवस सजनी काटाई लिया, उनको कीर्तन अच्छा लगता है, भगवान अच्छे लगते हैं, रात भर सोया नहीं, कीर्तन किया, तो हम लोग को वो जब कीर्तन करो तो कीर्तन करते करते सो जाएंगे। क्यों? कीर्तन में रुचि नहीं, भगवान में रुचि नहीं। उसमें स्वरूप दामोदर प्रभु, रामानंद बक्रेश्वर प्रभु और जितने क्षेत्रवासी जगन्नाथपुरी के भक्त लोग सभी मौजूद हैं, मौजूद थे। प्रवले आत्मने कृष्ण नाम संकीर्तने निद्रहार करिए वर्जन। तो बता रहे भाई कृष्ण नाम संकीर्तन करना है, कैसे? निद्रहार वर्जन करिए, एक मन होकर के मन को स्थिर करके। मैंने देखा हमारे मिताई प्रभु थे वृद्ध अवस्था में, ब्रह्मचारी को बोलते देखो आज रात्रि जागरण करोगे ना एकादशी, तो तुम लोग को मैं 1 किलो मूंगफली ला के दूंगा, या मैं अच्छे से अच्छे मिठाई ला के दूंगा, छेना ला दूंगा 1 किलो पनीर, लालच दे देते ब्रह्मचारी लोग रात को आके वो दूर में गंगा किनारे चले जाते बगान में जाके बैठ कर रात भर कीर्तन करते, सुबह उठ करके इन्होंने सब ब्रह्मचारियों को भक्तों को खिलाते पिलाते, उस लालच से ये करते। उनका उनका क्या होता, मैं एकादशी करूंगा, निर्जला करूंगा। इसलिए बताना है क्या कर संचनाम, क्या दंड प्रणाम, क्या बला राम कृष्ण कथा, जथा जथा पड़ी सबे गोविंद गोविंद रवे महाप्रेमी प्रमत्ता सर्वथा। कोई संचा नाम कर रहे हैं, कोई दंड प्रणाम कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रही है किसी किसी की, सब तो एक कैटेगरी के नहीं है, नहीं कैसे जाएगा? तो दंड प्रणाम कर रहे हैं, हे सनातन गोस्वामी कृपा करो, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, हे जीव गोस्वामी। उस समय तो ये नहीं, उस समय किसके लिए? सब धामों के नाम लेकर के, सप्तपुरी मथुरा माया काशी कांची अवंतिका मथुरा दारावती, ये सब सतपुरियों के नाम, और कुरुक्षेत्र गयगंगा प्रभास पुष्कर नित्य, ये सब नाम, और प्रहलाद नारद शंभु जनक भीष्म बलिर्व्यास कृपया शंभु नारद शंभु प्रहलाद शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्व्यास कृपया, इन महाजनों के नाम लेकर के, समस्त संतों के नाम लेकर के रात भर दंड प्रणाम कर रहे हैं, फिर कीर्तन कर रहे हैं, कोई संख्या नाम कर रहे हैं। इस प्रकार से उन लोगों ने चित्तवृत्ति को किचन लगा दिया और सब लोग प्रेम से मतवाला हो गया। क्यों? भगवत संकीर्तन के प्रभाव से भगवत शक्ति उतर आया, नहीं तो भगवत शक्ति नहीं मिल सकता। जब तो भगवत शक्ति नहीं मिला, तन तो दूर रहे, मन ही दूर रहे, तन ही क्या सुख रहे, सुखी रहेगा। तो रोग संख्या नाम दंड प्रणाम और रामकृष्ण भगवत कथा कीर्तन करने लगे। जथाथा पड़ी सबे गोविंद गोविंद रवे महाप्रेमी प्रमत्त सर्वदा, जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं और परिणाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो गोविंद गोविंद भगवान के नाम कीर्तन कर रहे हैं। और प्रेम प्रेम से बड़े मतवाला हो गया, प्रमत्त पागल हो गया, भूल गए सब कुछ। हेन काले गोपीनाथ पड़िया सार्वभौम साथ
गुंडीचा प्रसाद लई आईल अन्न व्यंजन पिठापाना परमान्न दधिछाना महाप्रभु अग्रेसे धरिल। उस समय गोपीनाथ आचार्य और जो उनका राज पंडित कौन सार्वभौम भट्टाचार्य और समस्त परीक्षा अर्थात सेवक लोग पांडा जगन्नाथ जी के राजभोग के महाप्रसाद सब धोकर के ले आया। क्या? जिसमें अन्न व्यंजन पीठा पाना और परमान्न दधी दही छेना जो इतना हो सकता है धोकर के ले आए, ला करके सामने दरख दी। क्यों? जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन में भी कोई व्रत तो होता नहीं, जगन्नाथ जी का भोग लगता है और वहाँ व्रत कोई करते नहीं, तो महाप्रभु जी व्रत करते इस पर पांडवों का बड़ा चिड़ हो गया। ये आज के दिन लाखों लाखों मन प्रसाद जो भोग लगता है क्या होगा यदि प्रसाद सब एकादशी किया तो विकसित होगा नहीं, उनका तो सब रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा अब तो सब लोग तो उनके मान्यता करने लगे, एकादशी यदि अन्न नहीं खाते हैं तो अन्न खाने से महापाप का भोजन होता है और पाप खाने करने से अपने आप रोग होगा, रोग हो जाने से भय हो जाएगा, भय होने से मोह होगा, मोह से शोकग्रस्त होगा, शोकग्रस्त से मर।